उस तरह से उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नहीं गई। तत्रापि, अब देखिए फिर आप उस शब्द लगा रहे हैं, तत्रापि उस मृग शरीर में भी, जैसे राजर्षि भरत के शरीर में भक्त थे, तो मृग शरीर में भी भगवत आराधन समीहान भावे न आत्मन मृगत्व तो कारण अनुस्मृत भीषम अंतप्त मान आह। मृग शरीर में पूर्व जन्म की स्मृति क्या इस जन्म की स्मृति भी कठिन है कि नहीं? पशु में कोई ज्ञान नहीं होता है। मनुष्य को जितना ज्ञान है कि मनुष्य को कम से कम इतना ज्ञान है कि कल एक तारीख था, नहीं किस तारीख, हम पता नहीं, हम तो भूल रहे हैं, आज एक है, तो मनुष्य इतना याद करेगा कल एक, कल 30 तारीख था, या कल आगे आने वाले काल में 2 तारीख हो जाएगा, या अक्टूबर का महीना चल रहा है, शरद काल चल रहा है, या बंबई नामक शहर, इन पशुओं को सब कुछ भी पता नहीं है कि आज का क्या मतलब है, कल का क्या मतलब है, ये सब कुछ ही पता नहीं, इसी जन्म का कुछ भी पता नहीं, फिर पूर्व जन्म का कैसे पता हो सकता है? लेकिन फिर भी यह भगवान की पूजा का प्रभाव था, भगवत आराधन समीहानुभावन, भगवत आराधनम समीहा, समीहा कहते हैं अनुष्ठान को, भगवान की पूजा एक किए थे निरंतर, इसलिए तस्य अनुभाव प्रभाव, अनुभाव मैंने प्रभाव, उसके प्रभाव से आत्मन मृगत्व कारण अनुस्मृत, भगवान की पूजा के प्रभाव से अपने मृगत्व का कारण पूरा जान रहे थे कि मैं क्यों मृग बना, राजर्षि भरत का शरीर छूटने के बाद मैं क्यों मृग बना हूं, पूरी पूरी बात याद थी, भगवान का भजन करने से सारी बातें याद थी। तो जब अपने पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण आ रहा था तो उनके हृदय में अनुताप होता था, ताप का अर्थ है जलन, उसको पश्चाताप कहते हैं, बाद में ताप अथवा अनुताप, जलन होने लगा है, तुम मैं कृष्ण प्रेम के बहुत ऊंचाई से गिर पड़ा, अपने पतन का कारण स्मरण आने लगा और इस तरह से कहने लगे, अहो कष्टम भ्रष्टो अहम आत्मवताम अनुतथा जिद्मुक्त समस्त संघस्य विविक्त पुण्यारण शरणस्य आत्मवता आत्मनि सर्वेषाम आत्मना भगवती वासुदेव तदनु श्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मरणाभियोगेन शून्य सकल यामेन कालेन समावेशितम समाहितम कास्मेन मनस्तत्व पुनर्ममाभस्या आरा मृगसुतम अनुपरिशेषरा। ये पश्चाताप का वर्णन, अहो अहो कष्टम, अहो कष्टम, हमारे जीवन में ये बहुत भारी दुर्भाग्य हुआ, हाय हाय, अहम भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट हो गया, मैं गिर गया, आत्मवताम अनुपथा धीर पुरुषों के पथ से, आत्मवानों के पथ से, मतलब भगवत भक्तों के पथ से मैं भ्रष्ट हो गया, भक्ति मार्ग से मैं गिर गया, जब क्योंकि मैं बहुत ऊंचा था पहले, बहुत ऊंचा से गिरा, विमुक्त समस्त संघस्य, उनको स्मरण आ रहा था कि मैं राजर्षि भरत के शरीर में समस्त आसक्तियों से मुक्त था, विमुक्त समस्त संघस्य, देह की आसक्ति से, पुत्र की आसक्ति से, पत्नी की आसक्ति से और राज्यानुबंध से, भोगों से, सबसे मैं अनासक्त था। देखिए समस्त शब्द लगा रहे हैं, विमुक्त समस्त संघस्य, समस्त आसक्ति से मैं मुक्त था और उस आसक्ति से मुक्त होकर के मैं वन में आया था, विविक्त पुण्यारण्य शरणस्य, पूर्ण अरण्य की शरण लिया था, वन में रह रहा था, विविक्त जो वन है, विविक्त है, विविक्त का अर्थ होता है जहां केवल भगवत भक्त रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, जिस वन में ग्राम्य लोग नहीं रहते हैं, विषयी लोग जिस वन में नहीं रहते, विविक्त का अर्थ यह, मैं विविक्त वन में रह रहा था जहां गिरने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि कोई सुनने का गाना वन में नहीं था और कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं, तो वो विविक्त कहते हैं उसको, कोई बहुत श्रृंगार के अवर व्यक्ति वहां नहीं जाता था, लंपट विषयी वन में नहीं जाते, इसलिए विविक्त कह रहे हैं। तो ऐसे विषयी लोगों से जो शून्य था, वैसे पुण्य परम पवित्र वन में भगवत क्षेत्र में मैं आया था, शरण लिया था, धाम की शरण लिया और आत्मवत मैं स्वयं ही अपने मन पर विजय पाया था भगवान की कृपा से, मैं धीर था, भगवान को अपना उपास मान चुका था, मेरा मन उनमें लगा था। मन मना, मेरा मन कहाँ था उस समय? तो सर्वेशम आत्मना आत्मनि भगवती वासुदेव, समस्त आत्माओं की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन लगा हुआ है, याद कर रहे हैं। भगवान समस्त आत्माओं की आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है सुंदर या प्रिय। जितने भी प्रिय वस्तु है संसार में, सबसे अधिक प्रिय है भगवान। यह आत्मा का अर्थ होता है चिद वस्तु, स्पिरिचुअल फैक्ट्स। तो जितने भी स्पिरिट है, जीव है, चिन्मय पदार्थ है, उन सबके सार है कृष्ण। इसलिए आत्मना आत्मनि, आत्माओं के आत्मा भगवान में मेरा मन लगा हुआ। और भगवती वासुदेव कह रहे हैं, यहाँ भगवान का अर्थ परम सुंदर, सौंदर्य एक ऐश्वर्य है। तो परम सुंदर वसुदेव नंदन में मेरा मन लगा हुआ था। कैसे लगा हुआ था? तद अनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मारण अभिजोगे न अशून्य सकल जामे न। मैं 24 घंटा सकल याम केवल भगवान श्री कृष्ण के अनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधन स्मरण में लगा हुआ था। अशून्य सकल जामे न, मेरा एक सेकेंड भी, एक क्षण भी कभी नहीं बीतता था जब मैं भगवान का कीर्तन न किया हो, मनन न किया हो, आराधन न किया हो, स्मरण न किया। सारा समय भगवान की पूजा में बीतता था। तस्य भगवतः वासुदेवस्य अनुश्रवणम् शब्देन ज्ञानम्, मैं सुनता था। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि राजर्षि भरत वहां के ऋषियों के पास कथा सुनते थे। श्रवण शब्द सिद्ध कर रहा है, स्वयं कह रहे हैं कि मैं निरंतर भगवान के विषय में सुनता था। और मनन, मनन का अर्थ होता है युक्ति द्वारा, मन के विचारों द्वारा भगवान के उन लीलाओं का मनन करना। तो मेरा कान भी लगा था भगवान की सेवा में, सुनता था, मेरा मन भी लगा था, मेरी जिह्वा भी लगी थी, हमेशा जप करता था, मैं संकीर्तन करता था, भगवान का गुण गाता था, आराधन और पूजा करता था, और इस तरह निरंतर मुझे उनका स्मरण रहता था। तो ऐसे भक्ति योग से अशून्य सकल जाने ना, हमारे सभी समय, सभी याम 24 घंटे बीत रहे थे इसमें। तो ऐसे भगवत भक्ति जो काल के द्वारा मेरा मन भगवान वासुदेव में समावेशितम, सम्यक रूप से स्थापित हो चुका, सम आवेशितम, पूरा आविष्ट था। मैं प्रयास करके नहीं लगाया था भगवान ने मन को, मेरा मन उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अपने आप लगा हुआ था, पूरा लगा हुआ था। और काक्षेन समाहितम, समाहितम कहा था तो अन्य सब विषयों से हट चुका था, पूरा पूरा केवल निशेष रूप से भगवान में लग चुका था। लेकिन तब तू वही मन एक दिन हारे उस दिन मृगी तनय के पीछे भाग गया, उस हर शिशु के पीछे भाग गया। भगवान में लगा हुआ मन पुनः मम अवधस्य आरा, दूर से भाग गया मन, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब हरे में लग गया। मृग सुतम अनुपरिशुश्राव, परिशुश्राव का बह गया, लग गया हरि के बालक में, लग गया भगवान में लगा हुआ मेरा मन हरि किशोर में लग गया। तो उसको कहा गया कि आपको पता चलना चाहिए लेकिन कब आपका मन भाग रहा है। तो कहते अब धस्य, मैं मूर्ख हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मन कब भाग गया। तो भाग तो उसी समय गया जब उसको आप जल से निकाले, लेकिन पहले उनको पता नहीं चला, पहले सोच रहे थे अभी ठीक है, अभी ठीक है, और उसके बाद तो पूरा पूरा भूल गए और दूसरे शरीर में पता लगा कि मैं गिर चुका था। इसे अबुद्ध कर रहे, मैं मूर्ख था, शुरू में ही समझ लेना चाहिए था कि मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है। तो इतना प्रयास के बाद मेरा मन भगवान में पूरा लगा था, इतनी साधना करके, और भगवान में अभिनिविष्ट मन भी एक मृग के पीछे चल दिया। मृग सुतम अनु, अनु माने पीछे, मृग के बच्चे के पीछे चल दिया। मृग शरीर में पश्चाताप कर रहे हैं, तो इतेवं निगूढ निर्वेद, इस प्रकार से निर्वेद वैराग इनके हृदय में छिपा हुआ है। मृगों के झुंड में जन्म लिए थे, मां थी मृगी, जन्म हुआ था। तो निगूढ निर्वेद का अर्थ है कि ये इसलिए अपना वैराग प्रकट नहीं करते थे कि माँ इनको अपना संग छोड़ने नहीं देती। पशुओं में भी स्नेह होता है, समझ लीजिए माता के साथ नहीं रहते, हरिणों के सहरियों के साथ नहीं रहते, तो माँ सोचती कि क्या हो गया इसको, कौन सा बुखार है, क्या है, क्यों दूर रहने लगा। तो निगूढ़ निर्वेद रखते, तो अपना बैराग प्रकट नहीं किए, अन्य मृगों जैसा रहते थे, लेकिन पूरा स्मरण था कि मैं राजर्षि भरत था, भगवान का भक्त था और भक्ति करनी है, लेकिन हर एक का शरीर व्याप्त था, उससे भक्ति हो नहीं सकती थी। उसे न तो जप हो सकता था, न करताल बजा सकते हैं, न जप आदि भी नहीं, और जप आदि भी करते तो हर समझते कि ये कौन बोली बोल रहा है, और बोल भी नहीं सकते। उस जिहवा में वह मीटर फिट नहीं था कि आप हरे कृष्ण बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, तो वो बिल्कुल बिकल हो रहे थे भगवान का जप करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, वो हाथ बेकार थे, तो फूल नहीं तोड़ सकते थे, भजन नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत दुखी थे कि हाय हाय, मुझे कब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, मैं कब फिर भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा। लेकिन यह वैराग्य निगूढ़ था, नितरांगूढ़ छिपा हुआ था हृदय में, अथवा गुण इसलिए था कि मृग शरीर में वैराग प्रकट नहीं कर सकते थे, इसमें क्या प्रकट करते, इसलिए छिपा रहा। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि माता के पास अपना वैराग नहीं प्रकट कर रहे थे, गमन प्रतिबंध संभाल, कहीं जाएंगे तो माँ भी साथ में लग जाएगी, है ना, माँ का स्नेह होता है। अभी मृग को जन्म दिया है तो बच्चा भी जाएगा तो वो भी साथ में जाने लगेगा, और वे अब वहीं जाना चाहते हैं जहां वे भक्ति किए थे, उसी क्षेत्र में, उसी हरि क्षेत्र में जाना चाहते थे। कालंजर पर्वत पर इनका जन्म हुआ था मृगी के गर्भ से, लेकिन उनको याद थी बात कि मैं वहां भक्ति किया था, तो फिर वहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उस स्थान के प्रभाव से इनका मन भगवान में पूरा लगा हुआ था। वो नहीं जा रहे थे इसलिए कि इसे पीछे चल रही थी माँ, माँ का बहुत बड़ा स्नेह होता है बच्चों के साथ ही। लेकिन एक दिन वो वन में थोड़ा इधर उधर दृष्टि बचा करके और हरिण चल रहे थे, बस थोड़ा सा वृक्ष की ओट में हुए और अपनी माँ को छोड़कर चल दी। इति एवं निगुड निर्वेद और विसृज मृगी मातर, अपनी माँ को हरिणी को छोड़कर चल दी। देखिए कितना बड़ा त्याग है, उसका दूध अभी इनका आहार है, वो इनको पोस रही थी, लेकिन भगवान का आश्रय लेकर के चल दिए, भगवान पोसने वाले, भगवान की भक्ति करने के लिए चल दिए उस हरि क्षेत्र में, भगवत क्षेत्र में, माँ को छोड़कर। इसे शिक्षा मिलती है कि भगवत भजन के लिए स्वजनों का त्याग करना आवश्यक है, स्वजन जितने भक्ति में बाधक होते हैं उतना दुश्मन भी बाधक नहीं होता है कि नहीं, वो कभी नहीं कहेगा कि मारा मत जप करो, और यदि स्वजन देख लेते हैं जप करते हुए तो कहते हैं क्या पकड़ा गए हो, क्या पागल हो गए हो, हरे कृष्ण वालों के साथ में भाग गए, ऐसे लोग बोला करते अपना भाई अपना मामा खासकर बहुत डांटते, और वास्तव में उनको ऐसा महसूस होता है कि फालतू काम है भक्ति, फालतू काम, उनको बुद्धि नहीं है, तो वो बाधक होते, और बल्कि जो शत्रु है तो खुश होगा कि चलो बेकार हो गया, अच्छा हो गया, ये नौकरी नहीं कर रहा है, नहीं कमा रहा है, तो अच्छा हो गया बेकार हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। अपनी माँ को छोड़कर पुनः भगवत क्षेत्र, पुनः भगवत क्षेत्र में आ गए। भजन करने के लिए भगवान का धाम आवश्यक है, भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को छोड़कर चल गई, जिसका सहारा कोई नहीं था, विधवा माँ थी और अपनी नवविवाहिता पत्नी घर में थी, अपने बड़े भाई सन्यासी हो चुके थे, माँ का पोषण करने वाला कोई नहीं था, पत्नी का पोषण करने वाला कोई नहीं था, लेकिन कृष्ण के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है, कृष्ण की भक्ति सबसे बढ़ करके, भगवान के लिए छोड़ा जा सकता है। तो राजर्षि भरत मृग शरीर में अपनी माँ को छोड़ दिया और भगवत क्षेत्र में गए। किस भगवत क्षेत्र में? भगवत क्षेत्र तो बहुत है, तो कहते हैं उपशम शील मुनिगढ़ दैतम साल ग्रामीण पुलस्त पुनःश्रम, जहाँ शालिग्राम शिलाएं बहुत पाई जाती है, उस पुलस्त पुल आश्रम में, पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान में मन लगाए हुए मुनिगण रहते हैं, मुनियों का बहुत प्रिय क्षेत्र है। उपशमशील मुनिगण द्वैत, उपशमशील मतलब भगवान की भक्ति में ही जिनका मन लगा हुआ है, सदा भक्ति करते रहते हैं, ऐसे मुनियों के लिए वह स्थान अति प्रिय है, जैसे वृंदावन मायापुर नवद्वीप, भगवान के भक्तों के लिए बहुत प्रिय स्थान है। तो उस क्षेत्र में चले गए। कहां से चले गए? कालंजरात, कालंजर पर्वत से चले गए। सब कुछ याद था ही कि इधर से कौन मार जाएगा क्या क्या सब कुछ बात याद थी और चले गए। तस्मिन अपि फिर उस आश्रम में भी उस भगवत क्षेत्र में पहुंचकर कालम प्रतीक्षमाण अब अपने मृग देह के नाश की प्रतीक्षा करने लगे कि कब यह देह का अवसर जाएगा, कब मेरा प्रारब्ध खत्म होगा, अपने पाप के कारण मैं हरिण बना हूं, कब यह हरिण का शरीर जाएगा, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और संगा च भृषम उद्विग्न और संग से आसक्ति से बहुत डर गए थे, ये किसी भी हरिण के साथ नहीं रहते थे, हरिण के साथ नहीं रहते कहीं भी, अकेले रहते, आत्मसहचरण, अपना साथी अपने आप थे, आत्मसहचरण मतलब आत्मा एवं सहचर जस सह, उनका सहचर और कोई नहीं, तो सहचर मतलब साथ चलने वाला, सहचरती थी सहचर जो साथ में चले, साथी कोई नहीं, बस अकेले अकेले घूमते थे, मृग अकेले नहीं रहते लेकिन ये अकेले रहते, ये और जो मृग थे वो सब विषयी थे, घास फूस खाते थे, खेलते थे, कूदते थे, वो तो भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं, इसलिए उनके संग में नहीं रहते थे, बहुत डरते थे। और शुष्क पर तेरे दुर्धा वर्तमान वर्तमान हो तो जीवित रहते थे, निर्वाह करते थे, कैसे? सूखा पत्ता से और सूखा घास से और सूखी लताओं को खाते थे, जो पत्ते अपने आप सूख करके वृक्ष से गिर जाते थे उनको खाते थे, जो घास सूख जाते थे उसको खाते थे, जो लता सूख जाती थी उसको खाते थे, किसी की हिंसा ना हो, हत्या नहीं करना चाहते थे, हरा पत्ता या हरी घास नहीं खाते थे, भगवान को पाने के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, बहुत सुंदर जीविका थी, सूखा पत्ता सूखा घास और मृगत्व निमित्ता अवसान में गड़े हैं और यही गिन रहे थे कब मृगत्व का अवसान होगा, नाश होगा। अरे गिनते गिनते एक दिन तीर्थ के जल में गंदगी में स्नान किए और तीर्थ के जल से सिक्त शरीर को छोड़ दिए, बहुत पवित्र नदी का जल सारे शरीर में लगा हुआ था, मरने से पहले भी जमुना जी के तट पर आदमी मरे या राधा कुंड पर, तो बहुत अच्छी बात है, उसका पानी कम से कम डाल दिया जाए शरीर, तीर्थोदक क्लीनम, या बॉम्बे आदि में भी कोई मरे तो कम से कम गंगा जी के जल को उसके पहले डाल देना चाहिए, सिक्त कर देना चाहिए, भगवान के चरणों का जल है, तो तीर्थोदक क्लीनम मृग शरीर हम उच्च सर्ज छोड़ दिए। श्री प्रभुपाद जी लिखे हैं इसके तात्पर्य में कि वृंदावन हरिद्वार मायापुर आदि जो तीर्थ स्थान है वहां बहुत पवित्र नदियां बहती हैं और उन स्थानों का सेवन करने चले, उनका संबंध भगवान से है, भगवान में मन लगता है, कहीं शरीर अगर ऐसे स्थान पर छूटा तो स्थान भी अपनी ओर से हमारी उन्नति करता है। तो इस तरह राजा से भक्त मृग शरीर छोड़े और अब वे एक बहुत शुद्ध वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे, ब्राह्मण परिवार में, बहुत सुंदर परिवार, वो फिर भी अपनी भक्ति को प्रकाशित नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
उस नवे अध्याय में राजर्षि भरत के ब्राह्मण शरीर में जन्म लेने की कथा है और यह दिखाया गया है कि उनके जीवन में राग द्वेष आदि का पूर्णतः अभाव था और भद्रकाली के सामने उन्हें बलि देने के लिए डाकू ले गए, चोर लोग पकड़ कर ले गए, फिर भी निर्विकार रहे, उन्हें कोई भय नहीं हुआ और न दुख हुआ। भद्रकाली के सामने काटने की तैयारी हो रही थी, तो पितु प्राप्त विज्ञान भरत मृगता गत प्रारब्ध कर्म दो सदन से जड़ विप्रता। अपने पिता भगवान ऋषभदेव के द्वारा जिन्हें आत्मविज्ञान प्राप्त हुआ था, आत्मा का स्वरूप प्राप्त हुआ था, वे राजर्षि भरत थोड़ी सी असावधानी के कारण मृगता गत मृगत्व को प्राप्त हुए, मृग हो गए। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से उन्हें ब्राह्मण शरीर मिला, परंतु शरीर में वे अपने को बिल्कुल जड़ अंग बधिर के रूप में दिखाते थे, इसीलिए लोक में उनका नाम था जड़। भरत को नहीं कहता था, भरत हम लोग कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भरत महाराज जड़ बने थे, जड़ जड़ विप्रत्व। जड़ का अर्थ होता है जिसे अपने देह का अनुसंधान न हो, जो देह न जानता हो, खाना न जानता हो, कुछ भी जिसे नियम विधि मालूम न हो, उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ विप्रत्व गता है, जड़ विप्रता गता, लेकिन भगवान की कृपा से इन्हें बहुत उत्तम कुल में जन्म मिला। भगवद्गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, जो लोग इस संसार को छोड़ देते हैं, संसार को भोगना नहीं चाहते हैं और आपको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इतने इतना भजन नहीं करते हैं कि आपके धाम में चले जाए, उनकी क्या गति होती है? जैसे आकाश में छाए हुए एक बादल के टुकड़े को हवा इधर उधर कर देती है, क्या उस तरह से उनका जीवन व्यर्थ होता है? संसार के लायक भी नहीं रहे और भगवान को आपको भी प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसे अपरिपक्व योगियों की क्या दशा होती है? वास्तव में किसी भी कर्मों का फल देने वाले भगवान हैं, तो भगवान जानते हैं कि उसकी क्या गति होती है। तो आश्वासन देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो शुभ कर्म कर रहा है, मेरी भक्ति करता है, वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाता है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति में तात गच्छति। तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तात का अर्थ है हमारे प्रिय अर्जुन, कल्याणकृत, कल्याण का आचरण करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति कभी दुर्गति में न जाए, दुर्गति में नहीं जाए। मैं सदगति या दुर्गति देने वाला हूं, मैं जानता हूं पूरी तरह से। तो क्या होता है उसका? तो भगवान कहते हैं कि वो अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग भोगने के बाद फिर वह इस लोक में जन्म लेता है। श्रुति नाम श्रीमतान गे है, योग भ्रष्ट हो भी जाए, श्रुति परिवार में जन्म लेता है, पवित्र परिवार में, जिसमें पहले से ही मांस मदिरा व्यभिचार आदि नहीं होता है, ऐसे परिवार को श्रुति परिवार कहते। भगवान की भक्ति होती है, वेद शास्त्र का अध्ययन होता है, श्रुति परिवार। और श्रीमान श्रीमता जो है, श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है, इसलिए कि उसे अपने खाने कमाने की चिंता नहीं रहती है। भक्ति करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के पास सांसारिक निर्वाह के लिए धन होना चाहिए, नहीं तो जो व्यक्ति अपने जॉब के लिए, काम के लिए व्यग्र रहेगा, बहुत कठिन है भगवान में मन लगा पाना। इसलिए भगवान योगग्रस्त भक्तों को जन्म देते हैं पवित्र परिवार में, सुखी परिवार में। यहां सुखी का विशेष रूप से अर्थ है ब्राह्मण, अथवा कोई भी परिवार जो सुखी हो, पवित्र हो, वेद शास्त्र के अनुसार उसका खान पान है, पहनाव है, संगति है, सब कुछ उसको शुचि कहते हैं। और श्रीमान आवश्यक निर्वाह के जो धन जिसके पास है श्रीमता, तो ऐसे परिवार में जन्म लेता है। देखो साधारण जो भ्रष्टों की दशा है और जिनको भगवान ने स्वयं ही भ्रष्ट किया था, तो उनकी जिम्मेवारी तो भगवान पर है उनकी भक्ति को बढ़ाने की। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब भरत जी को बहुत सुंदर परिवार में जन्म दिया, ये उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। अथा अथा बहुत मांगलिक शब्द है, ओम और अथा ये दो शब्द ब्रह्मा जी के कंठ से निकले हैं सृष्टि के सबसे शुरू में। तो किसी प्रकरण के प्रारंभ में अथा शब्द लगाना मंगल के लिए होता है। इसके पहले राजर्षि भरत की दुर्दशा हो रही थी हरिण शरीर में, और राजर्षि भरत के शरीर में भी वे हरिण कॉन्शियस में आ गए थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अथ शब्द देकर के ऐसा करें, अब अच्छा दिन चालू हुआ राजर्षि भरत का, अथ मंगल के लिए कह रहे हैं, बहुत सुंदर समय आया। तो अथ कश्चित द्विज वर्ष आंग्रह प्रवस्य, इनका जन्म एक द्विज वर्ष एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की छोटी पत्नी से हुआ, उसका अन्वय आगे चल करके मिलता है। लेकिन द्विज वर्ष अंग्रह प्रवरस सब षष्ठी विभक्ति में है, तो उनकी छोटी पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण थे वो दो पत्नियां रखे थे, तो एक पत्नी से नौ पुत्र हुए एक पत्नी से, और दूसरी छोटी पत्नी से एक बच्ची हुई और एक बच्चा हुआ उनको, मतलब जुड़ा संतान जुगल जिसको यमज कहते। तो उसमें जो बच्चा था वही राजर्षि भरत, छोटी पत्नी से जो जुड़ा संतान उत्पन्न हुई थी वही राजर्षि भरत ऐसा कहते हैं। गौतम आह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा सभी लोग कहते हैं। तो उनके पिता की विशेषता बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्विज वर्ष जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अंगिरा प्रवरस्य अंगिरा जी के गोत्र में उत्पन्न हुए थे, अंगिरा के वंश में, अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जैसे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उसी तरह से अंगिरा ऋषि बहुत तेजस्वी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और इनका चरित्र सब जगह शास्त्रों में आया है, हम लोग चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में पढ़ते हैं कि वे आए थे।